आता है जगदम्बा प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू के साथ खड़ी
है जी।
झाड़ू कौन सा?
वो तो झाड़ू जड़ होता है, काम किया और उठा के कोने में रख दिया। सफाई करने से पहले भी कोने में रखा रहता है, एक किनारे कोने में रख देते हैं ना, तो कोई झाड़ू हो गए, कहीं एक किनारे कोने में पड़े हुए होंगे। जब सफाई का मौका आएगा तो झाड़ू जरा झड़ अपना काम करने लग पड़ेंगे। हाँ, अभी झाड़ू लेकर खड़ी है, ऐसे समझो कि तैयार खड़ी है। अब ये सब बाप थोड़ी बताएंगे, बोर्ड पर लिख करके नहीं बताएंगे, कागज पर लिख कर नहीं बताएंगे, अपने अपने पार्ट को अपने आप डिक्लेयर करेंगे। जब डिक्लेयर करेंगे तो सब कहेंगे हाँ यही झाड़ू है, ये दाएं हाथ का झाड़ू है और ये बाएं हाथ का झाड़ू है। और झाड़ू का बहुत चिंतन चल रहा है, क्या बात है? कीड़े मकोड़े होते हैं, देखते हैं झाड़ू लग रहा है तो कहीं किनारा इनारा कोना होना ढूंढ लेते हैं। हाँ जी, भक्त लोग राम को मर्यादा पुरुषोत्तम किस हिसाब से कहते हैं? शायद ये बात बुद्धि में नहीं है। एक पत्नी का व्रत उन्होंने जीवन में धारण किया था, इसलिए उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, माने एक में मर्यादा रखी, उस मर्यादा को जीवन में उन्होंने क्रॉस नहीं होने दिया।
तो यहाँ भी बाप तो विदेशी बन करके आया हुआ है, उनकी तो मर्यादा की बात ही नहीं हो सकती। अगर एक में मर्यादा बांध करके रखे, एक से ही संबंध जोड़े, तो क्या रिजल्ट होगा? अनेक बच्चों से नहीं मिल पावेंगे सर्व संबंधों से, इसलिए बाप के पार्टी की तो बात नहीं हो सकती। लेकिन जो पार्वती या अव्वल नंबर सीता की बात है, उसके लिए ये लागू होता है कि वो एक के अलावा और कोई से संबंध इस जीवन में जोड़ने वाली नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सीता की आत्मा इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भले पार्ट बजाती है, लेकिन त्रेता में वो क्या बनेगी? राम बनेगी। इसलिए वास्तव में राम का पार्ट उसका है। ऐसे तो समान पुरुषार्थी है, जहां भी जन्म लेंगे 21 जन्म साथ ही साथ जन्म लेते रहेंगे।
भक्ति
और भक्ति मार्ग में इतने जानवरों का अवतार दिखाए गए हैं, तुम्हें ध्यान ही नहीं है? बाप विदेशी है नहीं, बाप विदेशी बनकर के आया हुआ है, है नहीं विदेशी। बच्चों के सामने विदेशी बनकर के आया हुआ है। हाँ जी,
परमात्मा को तो कम से कम मानते हैं,
लेकिन निराकार को मानते हैं।
बाबा बौद्ध धर्म के बारे में तो बोला ना, आत्मा को मानते हैं ना परमात्मा को मानते हैं, लेकिन इसे नास्तिक के साथ क्यों नहीं?
वो महात्मा बुद्ध को भगवान मानते हैं ना। आर्य समाजी तो महर्षि दयानंद को भगवान नहीं मानते। हाँ जी,
बीच में आत्मा ने भी वही शूटिंग की होगी ना,
जैसे भाई ने बताया कि आत्मा और परमात्मा को बौद्ध धर्म वाले नहीं मानते हैं, तो फिर यहाँ बीज रूप जो भी होगा बौद्ध धर्म का, उसी ने ये शूटिंग जरूर की होगी।
और
ब्राह्मणों ने किया हुआ पूजा तो घर पर नहीं जाता ऐसा कहा।
बराबर
में अगर ऐसी मछली आ गई तो सारा कृष्णा से चौपट हो जाए,
इसका
मतलब क्या है?
अगर
ब्राह्मणों ने किया हुआ कौन सा भी पुरुषार्थ
तो नहीं जाता
है,
कौन सा पुरुषार्थ किया?
कौन सा भी पुरुषार्थ
नहीं, नहीं नहीं अच्छाई का पुरुषार्थ, ये नहीं दुष्टता का पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ, ब्राह्मणों ने जो भी ब्राह्मणत्व का पुरुषार्थ किया है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, आज नहीं तो कल उसका फल मिलेगा। वो चौपट तब हो जाता है जब सर्विस के बजाय डिस सर्विस की हो, तो अंत समय में वो डिस सर्विस याद आ जाती है और चौपट हो जाता है।
हाँ जी, ये नंबर वन संगम युग की बात है ना। हाँ, तो ये खोपड़िया
विदेशी
होंगे कि विदेशी? हाँ, चैतन्य में आई ना।
क्या स्वदेशी ऐसे मणके नहीं है जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं? हैं, सत्युग त्रेता में भी आते हैं तो द्वापर से दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहते हैं, माने कम जन्म लेंगे, तो जो कम जन्म लेंगे वो क्या यहाँ जिंदा बचे रहेंगे? हैं, सड़ी छोड़ेंगे तो उनकी खोपड़ी को लात नहीं मारेंगे? हटाओ एक तरफ, हमें आगे बढ़ने दो।
बाबा बोलते हो कि संहिता में कायरता वाली बताया जाता है, तो ब्रह्मा बाबा ने जो संहिता का पाठ बजाया हुआ
है,
तो ये कैसे संहिता, कैसा संहिता?
ब्रह्मा बाबा ने जो पाठ बजाया वो मोह के आधार पर बजाया या निर्मोही होकर बजाया? अब तो वो चाहे बौद्ध धर्म का हो या कोई भी धर्म से कनेक्टेड हो, वो तो ठीक नहीं है। ब्रह्मा की गोदी में तो सभी विधर्मी पलते हैं, विधर्मी और विदेशी दोनों ही पलते हैं। जो पक्के स्वदेशी थे, पक्के स्वधर्मी थे, पूरे 84 जन्म लेने वाले देवता धर्म की आत्माएं थे, वो तो यज्ञ के आज में ही चले गए। और अभी फिर धीरे धीरे आते जा रहे हैं, इकट्ठे हो गए।
जन्म में जो जैसे बाबा ने बोला है बच्चों कन्या माता का आदर नहीं देते, तो बच्चों बच्चे अवतार बोला है सन्यासी के लिए।
जो जानवरियत के अवतार है वो पानी का आधार लेते हैं, क्या जल का आधार लेते हैं, और जो मनुष्य अवतार है वो धरणी का आधार लेते हैं।
अच्छा, दूसरी बात है कि जो सन्यासी,
अब इस बात को क्लियर तो कर लो, क्या पूछना चाहते
हैं? वही बात से दूसरा है कि सन्यासी लोग जो माला घुमाते हैं तो वो मुख में हाथ डालते
हैं,
तो माता कन्या को रिगार्ड देना हुआ ना?
गौमुख में हाथ डालना माता कन्या को, बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करो, और वो बुद्ध रूपी हाथ में वो क्या कहे जो गौमुख बनाते हैं उस मुख में हाथ डाल देते हैं, उस मुख को याद करेंगे, ब्रह्मा के मुख को याद करेंगे या कोई भी गैया के मुख को याद करेंगे तो सजा नहीं खाने के हकदार बन जाएंगे। बाबा ने कहा सिर्फ मेरे को याद करो, मेरे को याद न करके गौमुख को याद कर रहे हैं। वो गौ चैतन्य है या जानवर गौ है? जो गौमुख का कपड़ा बनाया वो किसकी यादगार है? हाँ, ब्रह्मा की यादगार है, वो भी दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा को याद करते हैं तो भी गनीमत, और स्त्री चोले वाले मुख को याद करते हैं तो
तो आओ रही अंतकाल जो स्त्री से मिले वैसे आयो नहीं मिले बहुत घाटा हो जाएगा। हाँ जी
गंगा को सभी पावन क्यों करते
क्योंकि वो सहयोगी बनती है। जो नदियां सहयोगी हैं प्रैक्टिकल में बाप से संबंध जिनका जुड़ा हुआ है वो पतित पावनी है और जिनका संबंध नहीं जुड़ा हुआ है वो फिर नदी क्या बन जाती है नाला बन जाती है।
पढ़ाई चलेगी
हाँ सुख की दुनिया पूरी स्थापन करके जावेंगे जितनी स्थापना होती जावेगी उतना विनाश भी होता जावेगा कि नहीं स्थापना और विनाश साथ साथ चलेगा या आगे पीछे चलेगा यज्ञ के आग से ही स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला भी प्रचलित हुई वो छोटा रूप था और अंत में सारी दुनिया का विनाश होगा पांच सात रोज में और वो आग लगकर पूरी होगी फिर बाप यहां रह के क्या करेंगे जरूर राजधानी स्थापन हो गई होगी सत्युग की कंप्लीट राजधानी स्थापन हो जाएगी फिर मैं चला जाऊं अब कृष्ण की पढ़ाई पूरी हो गई सबकी साढ़े चार लाख की पढ़ाई पूरी हो गई क्या और साढ़े चार लाख उनमें जो प्रवेश करने वाले हैं उन सबकी पढ़ाई पूरी हो गई क्या है कृष्ण में सारी दुनिया समाई हुई है क्या सारी भी रूप आत्मा उसके अंदर है क्या
राम का क्या टाइटल और कृष्ण का क्या टाइटल
है राम को बाप का टाइटल मिलता है कृष्ण को बच्चे का टाइटल मिलता है, है? अरे सारा सीढ़ी का चित्र उसी डिटेल में बताया हुआ है सारी अभी तक कथा कहानियां जो कही गई है वो किनके बारे में कही गई है बाप रचयिता और रचना बच्चा उन्हीं के बारे में तो सारी बात बताई गई रचयिता तो साकार ही होता है ना। हाँ जी
राम जो है
हाँ जी हाँ जी
राम होती है कि रचयिता बाप आ गया कृष्ण के सारे आदि
है
रचयिता बाप है जो
और वही सुप्रीम सोल बाप शिव है जो साकार रचयिता राम में आकर के प्रवेश करके रचयिता के रूप में प्रत्यक्ष होता है रचयिता जो है वो कभी निराकार नहीं होता रचना भी कभी निराकार नहीं होती कुम्हार है रचयिता और घड़ा है रचना ये नहीं कहेंगे कि मिट्टी रचना है मिट्टी की रचना कुम्हार नहीं करता जो रचना नहीं है तो रचयिता भी नहीं रचयिता और रचना का संबंध साकार में चाहिए क्या निराकार और साकार के मेल को बाबा कहा जाता है तो शिव बाबा ही तो रचयिता है और कौन है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी
बाबा वो गोकर्ण में शिवलिंग को कटे गोकर्ण में शिवलिंग को कटे में क्यों बताया
गोकर्ण में
शिवलिंग को कड्डे में क्यों बताया
बताया।
अरे शिवलिंग जब रचना रची जाती है तो गड्ढे में ही जाता है कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है बिना गड्ढे में जाए रचना होगी क्या
नहीं ऊपर की वो काली दो उंगली जाने का इतना ही ऐसे सुरख बनाया।
हाँ जी हाँ जी,
फिर ऐसे ऐसे करते तो गाय का।
हाँ जी, गड्ढे गड्ढे में ही दिखाया जाता है शिवलिंग। हाँ, कहीं कहीं जलाधारी ऊपर दिखा दी जाती है तो जरूर ऊंची स्टेज वाली होगी, और मोस्टली कहीं कहीं गड्ढे में भी दिखाया है। जैसे कंपिल में काली सोमनाथ मंदिर है तो गड्ढे के अंदर शिवलिंग दिखाया गया है।
फिर वो गणपति का बड़ा मूर्ति भी बताया, वो रावण ने ऐसे कुड़ाली से मारा
हुआ। हाँ, भक्ति मार की टीवी की बातों में चले जाते हो, छोड़ो उन बातों को, बुद्धि खराब कर देगा।
नहीं, टीवी बात नहीं, जाके देखा
वो बातें देखनी भी नहीं है। भक्ति मार्ग की बातें देखने से कुछ नहीं मिलना है।
नहीं, वो पहले के जमाने।
हाँ, पहले के जमाने की बातें हमें भूल जाओ, जो कुछ पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ है, सुना हुआ है, सब भूल जाओ। एक बाप और बाप की मुरली कोई बुद्धि में रहनी चाहिए।
उत्तर प्रदेश वाले गंगा आने के बाद जागते
हैं,
गंगा आती है तो जागते
हैं। हाँ,
तो फिर वो कहते हैं जय गंगा मैया। विदेशी हो गए।
जय गंगा मैया कहते हैं तो विदेशी हो गए। गंगा मैया को मानने वाले विदेशी होते हैं।
फिर बाप आने के पहले जागना चाहिए ना, बाप आए
हैं,
बाप जब आए तो जागना चाहिए ना।
बाप जो है, बाप को बाप के रूप में डायरेक्ट मानने वाले ही विदेशी है। और माता के द्वारा मानने वाले स्वदेशी है। बाप को पहचान लिया माना निवृत्ति को पहचान लिया। बाप और माता दोनों को ही पहचानना है।
माता गंगा है।
माता तो है, गंगाधर कहा जाता है ना। किसका धारोना किया?
नंबर वन माता ने
ना। गंगा का धारोना कर लिया ना, तो गंगा का पति हुआ ना। और अरे माताओं को भी बोल लेने दो।
दे अभिमान अंत तक रहेगा।
दे अभिमान अंत तक रहेगा, अंत तक माना जब तक 2036 संगमयुगी स्वर्ग रहेगा तब तक दे अभिमान रहेगा। पक्का कर दिया है? हाँ, अच्छा अच्छा, पूछ रहे हैं कि दे अभिमान अंत तक रहेगा क्या, या कृष्ण का जन्म लेने के बाद साल दो साल में खत्म हो जाएगा?
पढ़ाई कौन पढ़ाएगा सब?
है
पढ़ाई कौन पढ़ाएगा?
दे अभिमान रहेगा तो बाप ही पढ़ाई पढ़ाएगा।
18 में तो कृष्ण जन्म है।
कृष्ण जन्म नरक की दुनिया में होगा या स्वर्ग की दुनिया में?
नरक की
दुनिया।
स्वर्ग की दुनिया में स्वर्ग बनेगा।
स्वर्ग की दुनिया में होगा ना, वो संगठन अलग होगा ना, वो दुनिया अलग होगी या नरक की दुनिया के अंदर मिक्स होगी? वो अलग दुनिया होगी। उसके लिए बता दिया ये पांडव अकेला ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश ही नहीं कर सकेगा।
मुकर्रर रथ तो उधर ही होगा ना, बीच
में। कहाँ?
कृष्ण को जन्म देंगे ना
स्वर्ग में, मुकर्रर रथ होता है। अरे लक्ष्मी नारायण के चित्र में लक्ष्मी नारायण को एक दूसरे को देखते हुए दिखाया गया? अरे बताओ तो पहले, उनको एक दूसरे को देखते हुए दिखाया है, जैसे राधा कृष्ण को दिखाया है, एक दूसरे को देख रहे हैं। तो राधा कृष्ण का जो संबंध संपर्क है वो आंखों तक सीमित है, ज्ञान इंद्रियों तक, और लक्ष्मी नारायण का ज्ञान इंद्रियों से भी प्रैक्टिकल संबंध संपर्क नहीं है। तो उनको वहां अंदर घुस करके कार्य करने की जरूरत है? ये बुद्धियोग से ही सारा कार्य चलता रहेगा। नरक की दुनिया में, नरक की दुनिया में तुम मेरे को याद करते हो, जो स्वर्ग में चले जावेंगे वो मेरे को याद भी नहीं करेंगे।
बाबा, कैलाश मानसरोवर सब यात्रा करने के लिए जाते हैं, कैलाश तो शंकर जी की यादगार है, मानसरोवर किसकी यादगार है?
ज्ञान मान सरोवर, उसका पानी इतना स्वच्छ है के ऊपर से नीचे तक सारा तल दिखाई पड़ता है। मानसरोवर माना स्वच्छ ज्ञान जल का भंडार, जहाँ हंसों का निवास होता है। माना पक्की सूर्यवंशी आत्माएं जो नीर क्षीर विवेकी है, क्या गुण रतन ज्ञान रतन धारण करने वाली है, अवगुणों को धारण नहीं करती है, वही आत्मा वहां निवास करती है उस ऊंची स्टेज में। उसे कहते हैं ज्ञान मान सरोवर आदि। अगर एडवांस में शरीर छोड़ती है तो यहाँ ही जन्म लेगी। एडवांस में ज्ञान में आने के बाद अगर शरीर छोड़ती है तो पक्का है उसको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। और उसका ऐड हो जाएगा पुरुषार्थ। इस जन्म का पुरुषार्थ दूसरे जन्म में ऐड हो जाएगा।
और ब्रह्मा कुमारी में है,
अगर ब्रह्मा कुमारियों में है और उन्होंने एडवांस ज्ञान नहीं लिया, बेसिक पर ही पक्का निश्चय है, तो दो बातें हो सकती हैं। या तो कच्चा ब्रह्मा कुमार है, अगर पक्का ब्रह्मा कुमार है तो वो शरीर से जन्म नहीं लेगा। जैसे गुलजार दादी अगर शरीर छोड़ती है तो वो तो पक्के ही है ना, तो उनको शरीर का जन्म नहीं मिलेगा। क्यों? उनका इस बात का विश्वास ही नहीं है कि शरीर से हमको सिद्धि पानी है। जैसे जगदीश भाई है, मोहनी दीदी है, विश्वकिशोर भाऊ है, ब्रह्मा बाबा है, मम्मा है, ये बेसिक नॉलेज के पक्के थे। चंद्रमणि दादी है,
तो इनको फिर वापस जन्म
नहीं मिलेगा। वो एडवांस पार्टी वालों में प्रवेश करके पाठ बजा रहे। जैसे ब्रह्मा की सोल ज्ञान चंद्रमा के रूप में प्रवेश करके पाठ बजाती है, वैसे वो भी कोई न कोई में प्रवेश करके पाठ बजाती है। जब तक स्थूल पेट से जन्म न ले तब तक बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके उनको पाठ बजाना पड़े।
नहीं
जी, 84 जन्म भी ले सकते हैं, लेकिन सब नहीं, सब ब्रह्मा कुमार 84 जन्म नहीं ले सकते। जो पूरे ब्रह्माचारी होंगे वो 84 जन्म लेंगे। अगर दीदी दादी दादाओं के भी मक्खनबाजी करने वाले बन गए, क्या सह प्रशासिका मुख्य प्रशासिका, तो मक्खनबाजी की ना, तो उनके जन्म कम हो जावे। पक्का बेसिक का फाउंडेशन डालने वाला कौन? ब्रह्मा। तो ब्रह्मा को फॉलो करेंगे तभी तो ब्रह्माचारी बनेंगे। अगर दीदी दादी दादाओं को फॉलो करना शुरू कर दिया, नहीं ले सकते। पक्के बेसिक नॉलेज का मतलब यह है कि एडवांस नॉलेज में उनको बिल्कुल निश्चय नहीं है। बाप के पक्के और सच्चे अगर बाप को पहचाना है तो ये तो पक्का हो गया कि बाप तो 84 जन्म लेने वाला है। तो जो बाप को जान लिया, जिसने पहचान लिया है कि बाप 84 जन्म लेने वाला है, तो जो 84 जन्म लेने वाले के प्रति श्रद्धा होगी, वो श्रद्धा विश्वास ये साबित करेगा कि नहीं कि वो किसका फॉलोअर है, किसकी रचना है। हाँ जी,
रहना पड़ेगा और किसी को जाना पड़ेगा, पता पड़ेगा कि बाबा के बच्चे हैं। कैसे शादी हो सकता है कि महाविनाश के टाइम कितने को रहना पड़ेगा और कौन से बच्चे को?
वो एक ही बात तो जवाब जो अभी बात का जवाब था वो यहाँ भी जवाब है। जो बाप का पक्का आस्थावान बच्चे होंगे वो जानते हैं कि हमारा बाप तो मरने वाला है नहीं, अमरनाथ तो बाप के हम बच्चे हैं, तो हमारा बाप मरने वाला नहीं है तो हम भी मरने वाले नहीं। अरे किला संगठन रूपी किला वो बेहद का किला होता है, जो ईंटें बनाई जाती है वो ईंटें जड़ है लेकिन चैतन्य ईंटें आत्माएं हैं, वो सोने की ईंटें होंगी, माना सच्ची सच्ची आत्माओं का संगठन रूपी किला बनेगा। आपने क्या ब्रह्मा कुमारियों के कुला भी निकाल लिए?
राम वाली आत्मा दोबारा यज्ञ में एंट्री करती है, अनंत चिंतन मंदिर का पाठ शुरू है, इसके पहले तो किसी ने किया ही नहीं। बाबा उन्होंने मंथन करके 76 तक
मंथन उसने थोड़ा ही किया,
लेकिन महाराज
उसमें जो मुकर रूप से प्रवेश करता है उसने उसकी बुद्धि को घुमाया, जैसे कोई भूत प्रेत प्रवेश करते हैं ना, तो जिसमें प्रवेश करते हैं उसकी बुद्धि घूम जाती।
जो ज्ञान अमृत जो तैयार हुआ था,
हाँ
ज्ञान अमृत को पीने वाला तो राम वाली आत्मा थी।
हाँ जो मंथन करेगा वो खाएगा नहीं, भांग घिसेगा तो भांग घोटेगा तो खाएगा नहीं पिएगा नहीं, वो नहीं भी पिएगा तो भी उसकी नाक में और पेट में जाएगा अपनी घोट तो नशा ज्यादा चढ़े।
बाबा वो जो ज्ञान अमृत जो है,
हाँ?
उस 76 में बाप को निश्चय हो गया कि बाप का पार्ट क्या है,
हाँ जी,
और इसके बाद से बाबा निश्चय अनिश्चय के चक्कर में नहीं है, राम वाली आत्मा
ठीक है। अगर निश्चय अनिश्चय के चक्कर में हो तो परीक्षा में फेल हो जाना चाहिए ना, निशानी क्या होगी? निशानी यही होगी जो परीक्षाओं के भंवर से गुजरना पड़ता है उन परीक्षाओं में वो फेल हो जाना चाहिए।
अभी तक तो पास ही है ना बाबा,
हाँ
तो जो 76 में बाप ने तो अमृत पी लिया,
हाँ बाप ने अमृत पी लिया, बच्चों को भी पिलाया
पिला रहा था, लेकिन अभी तक कोई बच्चा अभी तक ऐसे तैयार नहीं हुआ जो निश्चय अनिश्चय के चक्कर से बाहर आ चुका
हो। जो बाहर आ जाएगा उनमें तो पहले वो चार आत्माएं बनेगी जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, और वो आठ आठ देवता बनेंगे जो अष्टदेव बनते हैं वो उस लिस्ट में आ जाएंगे, और वो आत्माएं अभी भी डिक्लेयर हो रही होंगी।
ज्ञान अमृत थे और बाबा ने हिंदी में ये भी बोला कि अर्थ में जब गंगा निकलेंगी तब एडवांस ज्ञान और क्लियर हो जाएगा। तो बाबा क्या क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अमृत जो पीला रहे हैं बाबा उससे निश्चय तो बैठ रहा है, और यहाँ जो पुरुषार्थ
निश्चय बैठ रहा है साथ साथ अनिश्चय नहीं बैठ रहा है,
अनिश्चय बैठ रहा है ना बाबा, तो निश्चय बिठाने के लिए वो निमित्त बनती है गंगा।
हाँ जी हाँ जी, जो जब कोई ऐसी सर्विसेबल शक्ति निकले तो निश्चय और ज्यादा बैठेगा
बाबा।
अगर अगर वैष्णवी देवी निकल आए, अगर जगदम्बा फील्ड में आ जाए, अगर गंगा फील्ड में आ जाए, अगर यमुना फील्ड में आ जाए, ये सारे तो विरोधी हुए पड़े हैं, अभी कोई सहयोगी है? है जो विशेष विशेष शक्तियां हैं शिव की वो तो सारी अभी फील्ड में ही नहीं है, तो अनिश्चय आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर वो फील्ड में आ जाएं और सहयोगी बन जाएं तो निश्चय बुद्धि पक्के होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी
बाबा ने बोला कि परमात्मा का जितना चरणों के बारे में पता पड़ेगा राम वाली परमात्मा है,
बच्चों को ही पता पड़ेगा,
हाँ बच्चों को जितना 84 जन्मों के बारे में बाप का बारे में पता पड़ेगा,
हाँ जी
उसी आधार पे उन्हें अपने 84 जन्मों का पता पड़ेगा।
वो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, तो जिस धर्म पिता के कुल का होगा वो उसी की बात मानेगा, और बात मानेगा इससे साबित होता है कि उसके ऊपर उसको श्रद्धा है विश्वास है, वो उसके ज्यादा नजदीकी है, और नजदीकी है तो 63 जन्मों में और 21 जन्मों में भी उसके साथ रहा हुआ है,
इसलिए वो उस संबंध में ज्यादा मनन चिंतन मंथन करता है।
जो परमात्मा के पास जन्म होता है परमात्मा क्लियर नहीं करेगी।
अपने अपने आप अपने को डिक्लेयर करने वाला सिद्धि को पा सकता है। हाँ जी,
वो डिक्लेयर करने वाली आत्मा गंगा बनेगी।
हाँ,
देखो गंगा परमात्मा का दर्शन पहला कर पाएगी।
ये कोई जरूरी नहीं
है, देखो डिक्लेयर करेगी।
ये कोई जरूरी नहीं है, डिक्लेयर करना जो होता है वो मंथन की बात है। और नदियां तो ज्यों का त्यों ज्ञान जल सुनाती है, या उसमें मंथन करके नई बात निकालती है। नदियां पानी की गंगा होंगी या दूध की गंगा होंगी, पानी की गंगा होंगी, वो कोई नई बात नहीं सुनाएंगी। तो जब नई बात नहीं सुनाएंगी तो नया पार्ट भी नहीं डिक्लेयर कर सकती।
लेकिन जो बाबा इशारा देते हैं 84 जन्मों के बारे में,
हाँ,
तो वो तो इशारा समझने वाली आत्मा।
वो तो ठीक है, जो जितना बाबा ने बोला उतना ही सुनाएंगे।
उसने परमात्मा का दर्शन पहले किया बाबा, वही तो स्व का दर्शन भी करेंगे।
परमात्मा का दर्शन तो पहले विदेश ही कर लेते हैं।
84
जन्मों का दर्शन वो करेंगे जो अष्ट देव होंगे, क्योंकि वो सबसे नजदीक है जन्म जन्मांतर के। उनसे जास्ती नजदीक जगदम्बा भी नहीं हो सकती, उनसे जास्ती नजदीक जो वैष्णवी पाठधारी है वो भी नहीं हो सकती। हाँ जी, ब्रह्मा भी नहीं हो सकते, वो तो बच्चा के रूप में जन्म लेंगे। 4.5 लाख जब संपन्न बन जाएंगे,
द्वापर के बाद
भी द्वापर में तो प्रश्न आता है क्या?
नहीं, लेकिन वो
कौन सी
ब्रह्मा की सोच?
तो क्या हुआ,
तो बाप के कॉन्टेक्ट में नहीं रहती है।
बाप के कॉन्टेक्ट में रहती है, सो क्या हुआ है? आष्टदेव जन्म जन्मांतर साथ रहते हैं, ब्रह्मा की सोल तो कितना बिछड़ जाती है।
जो चार भुजाएं दिखाया है, एक भुजा में जो सुदर्शन चक्र दिखाया दाएं तरफ को ऊपर का।
हाँ जी,
सुदर्शन चक्र है माना, वो किसका प्रतीक है बाबा? जो कोर्स में अभी तक बताया गया कि ओम राधे सरस्वती का है, जो ज्ञान में काफी ठीक है। लेकिन बाबा सुदर्शन माना स्व का दर्शन, जन्मों का पता पड़ता।
सुदर्शन चक्र जो है वो किसको दिखाया जाता है, कौन से देवता को दिखाया जाता है? विष्णु को दिखाया जाता है या कृष्ण के हाथ में दिखाया जाता है, है ना? तो कृष्ण की सोल और छोटी मम्मा जो प्रवेश करती है छोटी मम्मी में, उनकी यादगार है चक्र घुमाना। जैसे वो आत्मा जितनी प्योरिटी वाली होगी उतना ज्यादा लोगों को विश्वास कराएगी कि बाप आया हुआ है, और उतना ज्यादा स्वदर्शन चक्र तीखा घूमेगा। अभी तो कुछ नहीं घूम रहा है, अभी तो सूरज उतनी तीखी रोशनी नहीं दे रहा है। जो गायन है कि सिखों की आंख तब खुलती है जब दोपहर के 12 बजते, माना सूरज एकदम ऊपर आ जाएगा, सोजरा ही सोजरा हो जाएगा सारे संसार में। हाँ जी, हाँ जी, जितनी प्योरिटी की पावर उतना ज्यादा बाप का परिचय बुद्धि में बिठाने के निमित्त बनेगा। प्योरिटी की पावर नहीं है, याद की शक्ति नहीं है, तो दूसरों को कन्विंस भी नहीं कर सकता।
लेकिन बाबा क्या उनको खुद का थोड़ा सा जन्मों के बारे में पता पड़ा?
लक्ष्य संग नहीं है, जन्म जन्मांतर के संगी साथी है, तो उनको अपना पता नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी 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 माना एडवांस लेने के बाद, एडवांस लेने के बाद अभी तो ना गंगा है ज्ञान में एडवांस में, और ना वैष्णवी देवी एडवांस में है, और ना जगदम्बा को कहेंगे अभी एडवांस में है, क्योंकि रावण के प्रभाव में है, और न यमुना को कहेंगे अभी एडवांस में है। तो अभी तो सवाल ही पैदा नहीं होता।
विष्णु का जो पूजा दिखाई है, प्रैक्टिकल में इन चार आत्माओं में से कोई एक होनी चाहिए।
हाँ जी बिल्कुल,
बाबा माटी के जो भी तीन है जो एक हाथ में गदा बताया
है
माटी के तो दो प्रैक्टिकल थे
है?
जो दो थे वो भी प्रैक्टिकल होते
हैं क्यों नहीं होंगे अभी प्रवेश करके प्रैक्टिकल नहीं है
माना ब्रह्मा ने जो संकल्प द्वारा सृष्टि रची थी चार संयोग लिया था जिसमें से तीन के साथ फेल हो चुका
है
चार सहयोगिनी के सहयोग से
चार सहयोगी ब्रह्मा की बोले
नहीं नहीं ब्रह्मा ने जब संकल्प के द्वारा सृष्टि रची तो चार बार सृष्टि रची
आगी?
जिसमें से तीन बार फेल हो गई और चौथी बार जब लक्ष्मी आती है उनके सहयोग से जो संकल्प द्वारा सृष्टि रचते हैं पास हो जाते
हैं
तो ये चार आत्माएं जो तीन फेल हो गई प्लस ये लक्ष्मी वाली आत्मा और प्लस बाबा ये पांच आत्माएं जब ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं तो यही विष्णु के चार भुजाएं हैं क्या
हाँ जी हो जाए भी है तो उनको चलाने वाला पांचवा भी साथ में हाँ जी
गदा बाबा राम वाली आत्मा का अंतिम जो आसना जन
है
तो सेवक राम बोला था कि आपसी का
अभी का एक्स्ट्रा आयुधरी जन्म कहेंगे या चौरासीवा जन्म कहेंगे चौरासी अंतिम जन्म में ही तो प्रवेश करते हैं अंतिम जन्म में प्रवेश करते हैं या 83वें जन्म में प्रवेश करते हैं पतित से पतित तन में आते हैं या पावन तन में आते हैं तो पतित तन 84वां होगा या 83वां या 82वां 81वां होगा होगा ना तो सन 36 में जो प्रवेशता है वो 84वें जन्म की है उसके बाद जो प्रवेशता है वो आधी आधी है वो शरीर से आधा टाइम काला पार्ट बजाता है और आधा टाइम गोरा पार्ट बजाता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है
ऐसे बहुत सारी आत्माओं
के हाँ बहुत सारे जो उस तरह के होंगे वो उसी तरह का पार्ट बजाएंगे
भक्ति मार्ग में ज्ञान पूरा उलझा हुआ है इसी तरह से ज्ञान उलझने का नाम ही नहीं ले रहे
इसकी बुद्धि में किसकी बुद्धि में उलझा हुआ है और किसकी बुद्धि में सुलझा हुआ है हैं? हाँ जो एक से सुनते हैं उनकी बुद्धि में सुलझा हुआ होगा उन्हें प्रश्न ही पैदा नहीं होगा और जो अनेकों से कनेक्शन कर रहे हैं सुनते हैं उनको उलझा हुआ होता है क्या चीज
बाबा से प्रश्न करना चाहिए
हैं? बाबा से प्रश्न अगर अंदर रखेंगे तो अंदर अंदर घुमाड़ा मचाता रहेगा सारा ही सत्यानाश कर देगा अंदर अंदर इसलिए अंदर को बाहर निकालना फिर भी अच्छा है और इस डर से कि हम बाहर निकालेंगे तो हम विधर्मी विदेशी साबित हो जावेंगे और बाहर नहीं निकाला तो वो भी ठीक नहीं है
बाबा से डायरेक्ट पूछने की क्या बात
तो अच्छी बात है ना
और अगर यहाँ वहाँ कहा फिर उसके बाद जो है बात क्लियर नहीं हुआ तो मन और जो है टेंशन हो जाता है
ठीक तो है बात आती है तो क्लियर करना अच्छा है ना माना पुरुषोत्तम दिन जब होगा सारे संसार में विश्व का बादशाह कौन है विश्व पिता कौन है सारी दुनिया को जब ये पता चलेगा तो कोई दिन होगा कि नहीं मुकर्रर वो दिन किसी महीने में होगा कि नहीं होगा वो दिन किसी महीने का अंश होगा या नहीं होगा वो पुरुषोत्तम मास हो गया और वो महीना कोई वर्ष के अंदर नूद होगा या नहीं होगा तो वो पुरुषोत्तम वर्ष हो गया पुरुषोत्तम होने की पुरुषोत्तम घड़ी भी इस संगम युग में नुदी हुई है हाँ जी
क्या करेगा
आप पढ़ पढ़ के मत बताया करिए आप ऐसे ही बताइए जो पूछना हो शरीर सड़ता जाएगा हाँ पावरफुल होती जाएगी इसी तरह से हाँ हाँ वो ऐसे ही है जैसे पूरी घी में डाली जाती है, गरम तेल या घी में डाली जाती है तो नीचे बैठी रहती है, जब पक जाती है तो ऊपर आ जाती है। तो ऐसे ही जब ये आत्मा पावन बन जाएगी, 100% पावन बनेगी, तो ये शरीर सड़ना बंद हो जाएगा और ये प्रत्यक्ष हो जाएगा निरोगी कंचन का। हाँ जी
दिल्ली में बोला है कि राम वाली आत्मा हर युग में नंबर वन का पार्ट, सतयुग में भी
कोई तो होगा। चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, कोई होगा कि नहीं होगा? और ये 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 गाया किसने है? अरे हनुमान जी की तो स्तुति है, ये स्तुति गाई किसने? भक्तों ने गाई। अरे लिखा किसने? तुलसीदास ने लिखा। तो अपने शास्त्रों में मुरली में बोला है, अपने शास्त्रों में अपनी अपनी महिमा बैठ करके कर दी है। तो हनुमान चालीसा में ये जो महिमा की है, चार युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, ये किसने लिखा है? अरे हमारी आत्मा ने लिखा।
बाबा चारों युगों में नंबर वन का पार्ट बजती है, तो चारों युगों में कोई सहयोगी नहीं भी होगी ना उसको?
हाँ क्यों नहीं होगी?
तो चारों अलग होगी,
चारों अलग क्यों होगी? अलग अलग क्यों होगी?
शूटिंग में बाबा,
हाँ शूटिंग पीरियड में हो, हाँ शूटिंग पीरियड में भी होगी तो वहाँ भी होगी।
शूटिंग पीरियड में एक ही होगी?
नहीं नहीं नहीं, शूटिंग पीरियड में जो सहयोगी होगी वो वहाँ भी सहयोगी होगी।
बाबा हर युग बाबा ने बोला है, चार अवस्थाओं से गुजरती है।
हाँ
सतयुग है लेकिन उसमें प्रधानता सत्तों का रहता है।
सत्तों का तो सत्तु पाठ बजाने वाला कौन? सहयोगी के रूप में सात्विक पाठ बजाने वाला कौन? लक्ष्मी। तो त्रेता युगी के रूप में सतो सामान्य पाठ बजाने वाला कौन?
सामना पाठ।
तो वो हो गया, ऐसे ही रजो प्रधान। लेकिन इन चारों में एक आत्मा है जो चारों को शक्ति देती है। देवी एक ही है लेकिन एक ही देवी अनेक रूप धारण करती है।
कलयुग में
है,
कलयुग के जो है उसमें कोई तमो प्रधान का पाठ बजाने वाली
महाकाली, वो महाकाली का पाठ भी वही जगदम्बा सरस्वती बजाती है।
कॉलेज का
2004 में ड्रामा समाप्त हो गया।
2004 में ड्रामा की मानसिक शूटिंग खलास हो गई, मनसा से संबंधित जो शूटिंग हो रही थी वो रिहर्सल का कार्य समाप्त हुआ। अब सिर्फ वो बीच का कार्य चल रहा है जो कि ब्रह्मा के लिए, पहली मूर्ति के लिए, दूसरी मूर्ति के लिए जो कार्यकाल चल रहा था वो चल रहा है अभी। संगम में भी, संगम का पीरियड,
ड्रामा का रिहर्सल भी इसी पीरियड में।
सुनो ना,
तब शूटिंग जब समाप्त हो गई।
समाप्त नहीं होती है शूटिंग कभी जब तक ब्राड ड्रामा शुरू ना हो जाए, रिहर्सल कभी खत्म नहीं। आप तो बंबई के रहने वाले हैं, ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
कल जो है हमको ऐसा लगा कि आप आज आने वाले हैं
है। वो तो भक्तों को मालूम पड़ता है,
तो
माताओं को ज्यादा मालूम पड़ता है।
हमने जो है यही सोचा कि अगर कल पहले जो है बाबा का आना अगर तय होता मुंबई में, तो भक्तों को मालूम होता
है,
भक्तों को टचिंग होती
है। होती है ना टचिंग भक्तों को,
तो उसमें फोटो में शायद हमारा भी एक नंबर है।
हाँ
तो हमने ये सोचा कि अगर बाबा से मुलाकात होती है तो जो रेगुलर बाबा ने बोला है जो रेगुलर क्लास करेगा,
हाँ
उसको बाबा से मुलाकात होती रहेगी, उसको टचिंग की कोई इसी कोई बात नहीं है।
बाबा जिनको टचिंग होगी वो पहले भी आएंगे, जिनको टचिंग होगी वो पहले आ गई।
ये तो पुरुषार्थ की तीव्रता के ऊपर है, या 63 जन्मों में जितने जैसा जैसा नजदीकी पार्ट बजाया है उस बात के ऊपर है। 63 जन्मों में एक ही आत्मा विरोधी का भी पार्ट बजाती है, बहुत दूर हो जाती है, और 63 जन्मों में वही आत्मा कोई ऐसा जन्म आता है कि बहुत नजदीकी पार्ट बजाती है। तो शूटिंग हो रही है, रिहर्सल हो रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, वो रील जहाँ जहाँ जैसी खुलती जाती है वैसा वैसा अनुभव होता जाता है।
हाँ
जी
दोबारा जन्म दिया।
हाँ जी उसको वो जन्म कहेंगे जिसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म, या शरीर से भी जन्म है और साथ साथ उसी शरीर से वो श्याम सुंदर का भी पार्ट बजाता है। उसी जन्म में श्याम पार्ट, उसी जन्म में गोरे से गोरा पार्ट, इसलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म है। हाँ, उसको पहला जन्म कहेंगे और देवताओं के होंगे आठ जन्म सतयुग में और राम जैसी आत्माओं के होंगे कितने जन्म, नौ जन्म। तो वो नौवां जन्म कहाँ गिना जाएगा, चौरासी में गिनेंगे या पहला जन्म गिनेंगे, कहाँ गिनेंगे, पहला जन्म गिना जाएगा।
ज्ञान से सदगति।
हाँ जी
कृष्ण की आत्मा के लिए कहा था कि उनको नौ जन्म सतयुग में, राम के लिए तो नहीं बताया,
वो नौ जन्म यहाँ सतयुग में लेती है ना, राम की आत्मा सतयुग में नौ जन्म लेती है और कृष्ण की आत्मा त्रेता में तेरह जन्म लेती है, लेकिन है दोनों के चौरासी जन्म।
बाबा अपने पाठ का अंत में ऐसा होगा, ऐसा
अंत में क्यों, अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए,
तो वो कैसे मालूम पड़ेगा,
जो जितना ज्यादा अपने धर्म पिता के नजदीक होगा उसको अपने पाठ का पता चलता जाएगा, जो जिस धर्म का होगा वो उसी की बात मानेगा, कुमार का दादी के नजदीक होगा तो कुमार का दादी के जब ज्यादा पाठ खुलेंगे तो उसको भी अनुभव होगा कि हमारा जन्म कहाँ होगा, जैसे कुमार का दादी को अनुभव होता है कि हम कृष्ण का बच्चा बनूंगा, सतयुग में जो कृष्ण बच्चा होगा उसका बच्चा कौन बनेगा, सबसे ज्यादा अनुभव किसको हो रहा है, कुमार का दादी को, तो कुमार का दादी के जो बिल्कुल नजदीक होंगे उनको भी ये अनुभव होगा कि हम दूसरी डायनेस्टी में सतयुग में जाकर के हम इनके नजदीक ही बनेंगे, इनके कुमार का दादी
अपने पार्ट को होगा, अपने पार्ट को कैसे जानेंगे,
अरे अभी वो नजदीक होंगे ना कुमार का दादी के, आप तो नजदीक नहीं है तो आपको पक्का हो गया कि आप कुमार का दादी के साथ जन्म नहीं लेंगे, अरे वो अनुभव होना चाहिए ना।
ज्ञान से सदगति और भक्ति से दुर्गति।
हाँ जी
ज्ञान आता है बाप से,
ज्ञान बाप से आता है,
भक्ति माँ से।
हाँ सीधा सीधा बोलेंगे तो माँ तुम्हारा सब गला काटेंगे।
लेकिन आपको बोल
है
अभी नहीं बोल सकते, आज नहीं बोल सकते,
बात तो सही है,
क्या
माँ से भक्ति जाती
है, माताएं सीताएं तुम सब हो भक्तियाँ, ये मुरली में बोला तो है, मुरली में बोला है बाबा ने,
नंबर वन कोई भक्ति होगी ना,
हाँ नंबर वन भक्ति कोई होगी
तो बाबा, ये भी आ रहा है बृहस्पति
हाँ?
की दशा में
हाँ?
स्वर्ग था
हाँ?
और राहु की दशा में नरक,
हाँ जी
बाबा जब भक्ति मार्ग शुरू हो गया तभी तो नरक स्टार्ट हो गया,
हाँ?
माना भक्ति जिससे आई
हाँ?
क्या उसकी दशा पड़ने से नरक बन गया,
ये तो नौ ग्रह हैं, नौ ग्रहों में पांच हैं दाई ओर के और चार हैं बाई ओर के, जो बाई ओर के हैं उनकी दशा यानी उनके नजदीकी जब कोई पहुंचता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए कहते हैं इसकी दशा बैठी, शनिचर की दशा बैठ गई।
गीतापति भगवान अगर कृष्ण को मानेंगे तो भक्ति मार्ग है,
हाँ जी
तो माना दशा तो कृष्ण की पड़ी ना बाबा,
हाँ तो कृष्ण की दशा क्यों बैठाना, कृष्ण की दशा में तो मुसलमान रहते हैं। मुसलमान जो है वो चंद्रमा को अपने झंडे में आगे रखेंगे।
दशा पढ़ी ना बाबा?
हाँ,
तो राहु क्या कृष्ण वाली पढ़ी?
ये बात नहीं, वो तो ग्रह अलग है, वो चंद्रमा है। राहु चंद्रमा की रहबरी में पलता होगा, ये नहीं कि चंद्रमा राहु है। जो बच्चा बुद्धि होता है वो संघ के रंग में आ सकता है, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि वो पहले से ही खराब है।
राहु
राहु का मतलब है उल्टे रास्ते पर चला गया। वो माने उल्टा, राह माने राह, उल्टी राह पर चला गया। जो बाबा ने बताया उस राह पर नहीं गया। है वो आगे चल के बताएंगे सब बातें, अभी बता देते तो आगे चल के क्या बताएंगे। हो सकता है दो चार दिन में भी बता दे।
संधि के चित्र में तीन बार वक्र दिखाया
है,
तीन बार वक्र दिखाया हुआ है।
काहे के?
संधि के चित्र में।
हाँ जी,
तीन बार टर्न है।
हाँ,
तो सुप्रीम सोने राम वाली आत्मा का तीन बार भूमि को घुमाया हुआ।
हाँ, वो तो बताया ना कि चार बार सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा के द्वारा। ब्रह्मा ने कितनी बार सृष्टि रची? चार बार सृष्टि रची, तो तीन बार मोड़ लिया, चौथे में सफल हो गया। हाँ जी, है आदि में राम बाप फेल क्यों हो गया? बाबा ने मुरली में बता दिया वो बात, तो शुरुआत में इतना ज्ञान नहीं था इसलिए फेल हो गए। अभी तो पूरा ज्ञान है ना। आदि में जो ज्ञान था वो परिपक्व स्टेज में था या अधूरा था? अधूरा ज्ञान था। अभी तो ये नहीं कहेंगे कि अधूरा ज्ञान है। पूरी की पूरी गीता ऊपर से नीचे उतर आई।
संसद में बता दिया वो मुझे कि मैंने सारा ज्ञान तुम बच्चों को दे दिया
है।
सेवन में ही बता दिया
है,
तो सेवन से आज तक की जो पढ़ाई हो रही थी
वो मंथन हो रहा है, सिर्फ गीता का अमृत बन रहा है।
मुरली ने बोला है कि लक्ष्मी आने से पहले झाड़ू लगना है। झाड़ू लगने माना जितने भी असुर संस्कार वाले आत्मा है वो सब बाहर निकलेगी और यहाँ पे सिर्फ अच्छे आत्माओं के संगठन बनेगी।
नहीं तो नई दुनिया स्थापन कैसे होगी?
लक्ष्मी पैर भी नहीं रखेगी
और लक्ष्मी को तो परेशानी हो जाएगी इन बिच्छू टिन्नों को पालना करने में।
बाबा एक बार मुरली ने ये भी बोला है कि लक्ष्मी को इतनी परत नहीं थी, वो तो ज्ञान अमृत असुरों को भी बांट देंगे।
तो उस समय कहाँ से आ गए? क्यों ब्राह्मणों की दुनिया में असुर नहीं होते?
होते, लेकिन जो समय हो जाता है उसके बाद जब लक्ष्मी आ जाती है
वो धीरे ही धीरे तो होगा, एकदम हो जाएगा क्या?
लेकिन कंप्लीट होने के बाद ही तो
कंप्लीट जो है वो एकदम हो जाता है, जमदे जामदे हो जाता है क्या?
समय तो लगेगा।
समय जो बाप की प्रत्यक्षता का जो टाइम है उसमें समय लगता है कि नहीं? सन 76 भले प्रत्यक्ष कर दिया गया लेकिन बाप को बाप के रूप में संसार के बीच प्रत्यक्ष होने में टाइम लगता है ना, तो ऐसे ही विष्णु को प्रत्यक्ष होने में टाइम लगेगा। ऐसे थोड़े ही कि जितने भी ब्राह्मण परिवार उन सबके सामने प्रत्यक्ष हो जाएगी।
एक
सन 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो एडवांस पार्टी की कुछ आत्माओं के बीच में प्रत्यक्ष हुई या सबके बीच में प्रत्यक्ष हो गई?
सबके बीच में ये बात तो फैल गई।
नहीं फैल गई,
कुछ आत्माओं
दिल्ली वालों को भी पता नहीं था, बहुतों को छुपा दिया उसको, उस बात को कि गंगा के कंठे के जो किनारे के सेवा केंद्र हैं उन सेवा केंद्रों में कोई इस तरह का पार्टी भी चल रहा है। हलचल तब हुई जब मेहरौली सेवा केंद्र निकला, पूरा का पूरा सेंटर कन्वर्ट हो गया है अंत में 78-79 में।
झाड़ू लगते जाएगा और वो कदम रखेगी लक्ष्मी
है,
झाड़ू लगते रहेगा और
ऐसे नहीं, झाड़ू तीन चार रोज पहले से लगाया जाता है
और बाबा झाड़ू खत्म होने के बाद ही तो,
झाड़ू खत्म नहीं होता है, आत्मा है अविनाशी है,
संस्कार
झाड़ू लगाने का काम खत्म होने के बाद
आसुरी संस्कार जब खत्म हो जाएंगे
आसुरी संस्कार खत्म नहीं हो जाएंगे दुनिया में से, कुछ आत्मा अलग हो जाएंगी, घर में से वो बाहर निकाल दिए जाएंगे,
जो संगठन बनेगा देवा
किले से बाहर हो जाएंगे,
लक्ष्मी तो उसी किले में आने वाली है ना।
हाँ जी हाँ जी,
वो किले में तो कोई आसुरी वालों की नहीं,
नहीं नहीं नहीं,
तो फिर उन्होंने फिर जब अमृत बांटा तो आसुरों ने कैसे किया,
अभी भी तो बांट रही है
लक्ष्मी,
तुम क्या समझते हो, अव्यक्तवाणी में बोला है जो जो सेवा करनी चाहिए वो सेवा अफ्रीका ने अभी शुरू की है,
उन्होंने खुद ही जब बाप को परिचय,
अभी वो सेवा कर रही है कि नहीं, वो एडवांस ज्ञान जब ब्रह्मा कुमारियों में हेड ऑफिस पहुंच सकता है तो क्या वहां नहीं पहुंच सकता, वहां के लिए तो और ही भाई एडवांस के भेजते रहते हैं, बाबा को भी नहीं बताते सीधा ही भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो तुक्का फिट हो गया होगा, आसपास रहने वाले राक्षसी से हमेशा थोड़े ही उसको गपचियाते रहेंगे लिटरेचर को, कभी तो हाथ लगा होगा, तो जब हाथ लगा तो पढ़ा देखा और जब उस लिटरेचर को देखा तो बुद्धि में समझ में आएगा कि नहीं, बुद्धि में समझ में आएगा तो वो सेवा करेगी या नहीं करेगी, पहले अपने घर से सेवा करेगी, चंद्रवंश के अंदर सेवा करेगी या सूर्यवंश में पहले सेवा करेगी, है चंद्रवंश में सेवा पहले करेगी, वो अव्यक्तवाणी में बोल दिया ऐसी शान, जो असली सेवा करनी है वो अभी तक किसी जोन ने शुरू नहीं की थी, अफ्रीका जोन ने वो सेवा शुरू की है,
बाबा तो बेहद की बातें करते हैं तो बेहद का एक्टिकल क्या होगा,
अफसोस करी क्या, अरे प्रैक्टिकल में साथ ही नहीं है तो क्या लड़ाई लड़ने की क्या जरूरत, तिरुपति तिरुपति तिरुपति, अरे वो तो जन्म जन्मांतर का पति हो गया, अफसोस करी क्या, इस एक जन्म का नहीं है तो क्या आ जा, अफ अरी का तीन ही शब्द है, अफ माने अफसोस, अरी माने अरे, का माने क्या, अरे किस बात का अफसोस, 84 जन्म की तो प्राप्ति कर ली और क्या चाहिए,
है एक ही बने
रहेगी, द्वापर के बाद भी एक ही बन के रहेगी,
पुरुष चोला भी लेगी,
पुरुष चोला रहेगी तो भी एक ही बन के रहेगी, किसी दूसरे के कंट्रोल में नहीं चलेगी, क्या हुआ तन ही तो चेंज होगा, और बगैर प्रैक्टिकल में चाहिए या हवा में चाहिए, है और विश्व का बादशाह प्रैक्टिकल में चाहिए कि हवा में चाहिए, है कहीं विश्व पार्टी का ज्ञान ज्ञान तो नहीं लिया है, विष्णु कृष्ण वाली सोल
सत्यु के आदि में फूल प्रिंस रहती है और कलयुग के अंत में फूल बेगल बनती है, बेगल तो प्रिंस का पार्ट कृष्ण वाली सोल
है, कृष्ण वाली सोल जो सत्युग में कृष्ण होगा उसके बारे में शास्त्र में कोई हिस्ट्री है, शास्त्र में कोई हिस्ट्री है, शास्त्र में कोई हिस्ट्री नहीं, जो भी शास्त्रों में हिस्ट्री है कौन से कृष्ण की है, संगम की कृष्ण की है, तो जो भी पार्टधारी है राम है या कृष्ण है वो वास्तव में पर्सनालिटी एक है, क्या एक ही पर्सनालिटी है, एक ही भगवान है, एक ही मुकर्ररत है, उसमें दो आत्माएं पार्ट बजाती है, समझने की बात है कि कौन सी आत्मा क्या पार्ट बजाती है और कौन सी आत्मा क्या पार्ट, कौन सी आत्मा बाप का पार्ट बजाती है और कौन सी आत्मा बच्चे का पार्ट बजाती है,
ज्ञान से बेगर बनता है,
ज्ञान से बेगर बनता है,
ज्ञान धन से बेगर बनता है, वो तो कृष्ण की आत्मा अभी भी बेगर है। तो बेगर जो है ज्ञान, बाबा ने बेगर की परिभाषा दी है, बेगर पास, बेगर के पास तो धन पद मान मर्तबा कुछ भी न हो। धन पद मान मर्तबा इस दुनिया की बात है या बाहर की दुनिया की बात है? ये कहां की बात है? सूक्ष्म बतन की
हीरोइन का पार्ट रामकृष्ण का बोला जाता है, रामकृष्ण की आत्माओं का पार्ट हीरो हीरोइन का बोला जाता है।
हाँ जी, हाँ जी।
फिर ये जो लक्ष्मी नारायण,
हाँ, लक्ष्मी में जब तक बुद्धियोग में प्रवेश होकर के पार्ट बजाएगी वो आत्मा, उनकी सहयोगी शक्ति, कृष्ण की सहयोगी शक्ति है ना ओम राधे, जब तक लक्ष्मी में प्रवेश करके पाठ बजाती है, बुद्धि योग में प्रवेश करके पाठ बजाती है, तब तक यहाँ संगम युग की बात है। फिर वहाँ बुद्ध रूपी पेट में की जगह स्थूल पेट से जन्म लेकर के पाठ बजाएगी।
संगम योगी कृष्ण का पाठ शास्त्र में है, सत्यवी कृष्ण का कोई गायन नहीं है। संगम योगी कृष्ण को गीतापति भगवान तो कह सकते हैं ना, क्योंकि आप उन्हीं के द्वारा मूल्यों का क्लैरिफिकेशन।
संगम योगी कृष्ण का नाम क्यों डालना, ये तो बहुत अज्ञानता हो गई। ज्ञान सुनाने वाला, ज्ञान देने वाला, वर्षा देने वाला, नई दुनिया बनाने वाला कौन है? कृष्ण की सोल है।
अगर राम वाली सोली तो शिव बाबा का पाठ बजा रही है, सदा कायम इस सृष्टि पर शिव बाबा रहता है।
तो एक बात करो ना, कभी राम की बात करते हैं, कभी कृष्ण की बात करते हैं, कभी कृष्ण को आगे कर देते हैं, कभी राम को आगे करते हैं। अभी मुख्य पाठ बजाने वाली आत्मा कौन है, बाप या बच्चा? तो बाप, बाप का पाठ बजाने वाला कौन और बच्चे का पाठ बजाने वाला कौन?
तो राम वाली आत्मा है।
बस जो है उसी को आगे रखना,
तो वही संगम
युगी कृष्ण जब कहेंगे तो उसमें कोई सोल मिक्स करके बोलेंगे, बुद्धि में आ जाएगा ये कृष्ण वाली आत्मा है, तो पर बात उल्टी हो जाएगी। गीता का भगवान कृष्ण थोड़े ही है, गीता का भगवान राम बाप है, बाप है या बच्चा है? तो बच्चे को भी इसमें क्यों लाना, बार बार बुद्धि में वो बच्चे की बात आ जाती है, इसका मतलब त्रेसठ जन्म में उस कृष्ण बच्चे से ज्यादा नजदीक का संबंध रहा है।
हम तो कहाँ कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं राम बाप जो संगम योगी कृष्ण है,
हाँ,
वो गीता पति
कृष्ण की बात ही नहीं। राम बाप और शिव बाप, ये दोनों बाप मिलकर के एक असली बाप बन गया। निराकार बाप है तो भी कोई काम का नहीं, और साकार बाप राम है तो भी त्रेसठ जन्म हमारे कोई काम का नहीं रहा। उसकी ताकत जन्म जन्मांतर कम होती गई या विदेशियों विधर्मियों के ऊपर वो ओवर पावर करता गया, कम ताकत होती गई, तो हमारे काम का है क्या? नहीं। काम का कब है? जब वो निराकार साकार में प्रवेश करे तब हमारे काम का है, और उसमें बीच में हम कृष्ण को लगा दे तो अज्ञानता हो जाएगी।
अंदर से अलग और बाहर से अलग आत्मा होगी।
हाँ जी,
उन आत्माओं से बाबा ने बोला कि बच के रहना, सावधान।
हाँ हाँ,
और बाबा उन बच्चों को बोला, बच्चे कह सकते हैं
उनको,
वैसे बच्चों को,
ऐसे बच्चों को
अंदर से कुछ और बाहर से कुछ,
भोले बच्चे कभी अंदर से एक और बाहर से दूसरे नहीं होते, जो भोले होते हैं जो बात अंदर है फट बाहर कर देते हैं।
कृष्ण की राशि क्राइस्ट से कैसे मिली?
कृष्ण की राशि क्राइस्ट से इसलिए मिलाई है कि उसमें रा और जुड़ा हुआ है, क्रम है रा और जुड़ा हुआ है। हाँ जी, वो राम रावण भी बनता है, कृष्ण कंस भी बनता है।
बाबा अंदर कुछ है बाहर कुछ है या भोली आत्मा?
नहीं, भोली आत्मा तो है, लेकिन भोले जितने भी हैं कम कला वाले पार्ट बजाने वाले उनमें वो मुखिया है क्या? जो दूसरा नारायण है, तीसरा नारायण, आठवां नारायण, ये जितने भी कम कलाओं वाले नारायण है उनके मुकाबले वो ज्यादा भोला है। और भोला होने के कारण जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो कोलू में पेरा जाता है। तो कृष्ण की सोच जितना कोलू में पेरी गई है इतना कोई नारायण घाटा नहीं उठाता।
बाबू बाकी के सूर्यवंशी आत्माओं के साथ कंपेयर किया तो
वो उनको ये थोड़े ही कहेंगे कि वो भोले हैं। वो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, बुद्धू बनने वाले नहीं है। उन्हें विधर्मी आके बुद्धू बना दे एकदम, वो नहीं होते हैं। अंत तक विधवियों से विधर्मियों से मुकाबला करते हैं।
तो बाबा ने बोला कि भोलो का नाथ
बोलो, तो इसीलिए तो उनका नाथ बनता है आगे। इसीलिए बोला कि जो सात नारायण है उन सातों नारायण उनकी प्रजा वर्ग के मुकाबले जो ज्यादा बोला है उसको मैं अपने अपना अपना बच्चा बनाता हूँ, प्रैक्टिकल बच्चा बनाता हूँ। कृष्ण किशोर को बच्चा बनाता हूँ तो और दूसरे जो 4.5 लाख वो बच्चे नहीं बनते, प्रजा नहीं बनते, वो भी बच्चे बनते हैं।
छोटे बच्चे को भी बन सकते हैं, एडवांस नहीं पढ़ सकते हैं उन बच्चों को अर्घ प्रति के भाव रहते
बोला।
जो बच्चे एडवांस के बच्चे जो होते हैं
हाँ?
जो सब स्व के अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स
हाँ?
वो बच्चों को अर्घ प्रति क्या भाव होता है
आते? औरों के प्रति क्या भाव रहता है? औरों के प्रति माने राम वाली आत्मा के प्रति क्या भाव रहता है?
परिवार के प्रति
है? परिवार में राम वाली आत्मा नहीं है?
राम बाप तो है ही।
तो क्या भाव रहता है उसके? अच्छा बताया, जो बात पूछी जाए उसका जवाब दो कि उनका जिनके अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है एडवांस पार्टी वाले बच्चों के अंदर, तो उनका राम वाली आत्मा के प्रति क्या भाव रहता है? पॉजिटिव माने
सकारात्मक,
नकारात्मक भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है?
अगर राम बाप के प्रति नेगेटिव है भावना
हाँ,
तो दूसरे का सुप्रीम कॉम्प्लेक्स है,
नेगेटिव हुआ ना,
वो
ही तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। वो कहेगा ये भगवान है तो हम भी भगवान हो सकते, ये निराकार को याद कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हुआ। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है अपने को सुपर मानना। कोई बल अपने से अच्छा है भी तो भी उसके मुकाबले अपने को सुपीरियर समझना है। नहीं ना एडवांस में जो भी है वो सारे ही आखिरी जन्म में आकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते हैं या प्रभावित हो जाते हैं। जो भी अष्टदेव भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो और कौन बचेगा? अष्टदेव नहीं, सप्तदेव। जो सात देवताएं हैं वो भी कन्वर्ट हो जाते हैं तो और कौन बचेगा बताओ? हाँ जगन्नाथ की भुजाएं हैं टूटी हुई दिखाई जाती है इस यादगार में। तो सारे ही तो विदेशी और विधर्मी हो गए, दुश्मन बन गए। जब सारे ही प्रभावित हो गए, दुश्मन बन गए, तो सहयोगी कौन रहा?
है मंगलवार अगर गिनेंगे तो सात जुड़े ज्यादा से ज्यादा सहयोगी।
अब वो ज्यादा से ज्यादा जन्म सहयोगी बन के रहे होंगे, सबने साथ छोड़ दिया तो भी 83वें जन्म में सहयोगी बन के रहे हो।
कैसे तो
है? हाँ जी, जहाँ जहाँ जो जैसी बात समझनी है वहाँ वैसा समझ लो। हाँ।